पृष्ठ संख्या 97। चूंकि यह संगति बैठ जाती है, इसलिए लगता है कि निराला का उद्देश्य केवल पारंपरिकता का पृष्ठ प्रेषण नहीं है, बल्कि जाने अनजाने इस दूसरे अर्थ की प्रतिष्ठा ही है। वैसे भी तुलसीदास कविता में से स्थूल विवरण और इतिवृत्त को निष्कासित करने में निराला ने अद्भुत सफलता पाई है, और दूसरा अर्थ भी इसमें इतना अमूर्त नहीं है। फिर भी रत्नावली के भाई द्वारा उसे अपने घर लिवा ले जाने का स्थूल विवरण उन्हें लाना ही पड़ा है। संपूर्ण कविता की ओजस्वी बिंबात्मक भाषिक संरचना के बीच वह दो तीन पद किस तरह खटकते हैं, इसे कोई भी आसानी से लक्ष्य कर सकता है। सरोज स्मृति आख्यान मुक्त तो है, लेकिन विवरण मुक्त नहीं। शेष सारी लंबी कविताएं इतिवृत्त से ग्रस्त हैं, और वह प्रबंध रचना के क्षेत्र में कुछ नया विशेष नहीं जोड़ती। वैसे कहने के लिए शिवाजी का पत्र और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के लिए तो यह भी कहा जा सकता है कि वह मुक्त छंद में लिखी गई हैं, और यह लंबी कविताओं की रचना के संबंध में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। या यह भी कि राम की शक्ति पूजा अपनी नई प्रसंग उद्भावना और संश्लिष्ट तथा ओजस्वी पृष्ठ संख्या 98 शब्द बंध को लेकर हिंदी साहित्य में बेजोड़ है और क्लासिक की परंपरा का विस्तार करती है। लेकिन जैसा कि निबंध के आरंभ में ही मैंने कहा है, प्रबंध रचना के स्थापत्य में निराला या किसी के भी योगदान को इसलिए महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता कि उन्होंने क्लासिक की ओजस्वी परंपरा का कितना सफल निर्वाह किया है, बल्कि इस आधार पर कि उन्होंने प्रबंध रचना के स्थापत्य की आज के आधुनिक संदर्भों के अनुकूल किस छोर से और कितनी सार्थक तलाश की है। इस लिहाज से देखने पर हम आगे चलकर देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा के संबंध में वह परंपरागत प्रशस्ति वाक् एक छद्म साबित होते हैं। दरअसल इस कविता के महत्वपूर्ण होने का कारण कुछ और ही है। निराला की इन कविताओं का महत्व इस मायने में है कि उन्होंने इसमें भी अपने निजी रचनात्मक जीवन का आत्म प्रक्षेप करके उसे पूरे इतिवृत्त के माध्यम से सर्वथा एक नए मौलिक और अनुभूत अर्थ प्रसंग की सृजना की है। आख्यान को तोड़कर भी उसके पुराने पारंपरिक संदर्भगत इतिहास सिद्ध अर्थ की रक्षा करते हुए उसमें नए अर्थ की प्रतिष्ठा ही इन कविताओं की मौलिक शक्तिमत्ता का प्रमाण है। लेकिन यह नवीन अर्थ प्रतिष्ठा भी जीवन दर्शन या आत्मचिंता के स्तर पर निराला ने नहीं की है, बल्कि ऐसा उन्होंने आत्म प्रक्षेप और आत्म साक्षात्कार के स्तर पर किया है। यही फर्क उन्हें शेली या इलियट या मुक्तिबोध से अलग करता है। इसलिए मुक्तिबोध की कविताओं की तरह उनकी लंबी कविताओं को प्रबंध के नए स्थापत्य की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, ना ही इलियट की कविताओं की तरह उनकी कविताओं को सिर्फ लंबी कविताएं कहा जा सकता है, क्योंकि ना तो निराला आख्यान से निजात पाने की चेष्टा करते हैं और ना ही मुक्तिबोध की तरह अपने आत्मचिंतन, अपनी अभिव्यक्ति, आत्मसंभवा को मौलिक सृजना द्वारा आख्यानवद प्रतिष्ठित करते हैं। निराला में पारंपरिक कथात्मकता भी है, और पारंपरिकता से पृथक उसका आत्म साक्षात्कार के स्तर पर एक नया अर्थ विकास भी। इसीलिए उनकी इस तरह की कविताओं के विश्लेषण वाले इस निबंध का शीर्षक मैंने लंबी कथात्मक कविताएं रखा है। छायावादी कवि की भाषिक संरचना की नई दृष्टि एक नई आवश्यकता थी, जैसा कि कुछ लोग मान बैठे हैं। यह प्रयास कोई पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि गद्य की इतिवृत्तात्मकता द्वारा फेंकी गई चुनौती का परिणाम था। इसलिए इन कवियों को, चाहे वह पंत हो या निराला, प्रसाद या महादेवी, एक नए बिंबात्मक अंतर्मुख लयात्मक गीत युक्त भाषा बंध का आविष्कार बड़े परिश्रम से करना पड़ा। पहली चीज यह भाषा की नई खोज ही है जो मैथिली शरण गुप्त या हरियोत की इतिवृत्तात्मक पारंपरिकता से इन्हें अलग करती है। इस खोज का सुखद परिणाम इन कवियों द्वारा रचित सौंदर्य गीतियों में देखने को मिलता है। विवरण की भाषा पृष्ठ संख्या 99 से बिंब की भाषा की ओर यह प्रयाण छायावादी कवि की पहली विशेषता है। गद्य द्वारा विवरण के क्षेत्र पर कब्जा जमा लेने के बाद कविता को उसके अभिजात पारंपरिक सौंदर्य रूप में सुरक्षित रखने के लिए बिंब की इस नई भाषा का आविष्कार एक न टाली जा सकने वाली व्यवस्था थी, जिससे इन कवियों को सबसे पहले टकराना पड़ा। यह नई भाषा गीतों, मुक्त गीतों या छोटी आत्म संबोधनात्मक कविताओं के लिए तो काफ़ी शक्तिमत साबित हुई, लेकिन घपला वहाँ उठ खड़ा हुआ जब पाउंड की तरह ही पंत, प्रसाद या निराला ने अपने को अपने पूर्ववर्ती प्रबंध काव्य के रचयिताओं हरिऔध, तुलसीदास, मैथिलीशरण गुप्त गुप्त के समकक्ष रखकर उसी स्तर तक अपने को उठाने की चेष्टा की। तुलसी या हरिऔध या मैथिलीशरण के लिए गद्य की दखलंदाजी कोई समस्या नहीं थी। तुलसीदास को तो इसका एहसास भी नहीं रहा होगा, वरना वह रामचरितमानस को भाषा निबंधम की संज्ञा कभी नहीं देते। हरिऔध और मैथिलीशरण गुप्त के जमाने में गद्य अभी कविता के किले के इर्द गिर्द सुरंगें बिछा रहा था, उसका खतरा खुलकर सामने नहीं आया था, लेकिन छायावादियों के सामने तो वह आंख से आंख मिलाकर खड़ा था। प्रसाद को शायद इस चुनौती के द्वारा अपने नए रचनात्मक बिंदु की पुनर्पहचान करने में सबसे अधिक सफलता मिली, इसीलिए शायद उन्होंने महाभारत या रामायण के इतिवृत्त को अपनी प्रबंध रचना के लिए नहीं चुना, क्योंकि यहाँ उन्हें लगा होगा कि इतिवृत्त से निजात नहीं मिल सकती, जबकि इंद्र अथवा मनु के मिथिकल प्रसंगों में इतिवृत्त को जीना कर सकना संभव होगा। जीवन दर्शन के अलावा रचनात्मकता के शिल्प का यह आग्रह या यह अनिवार्य आवश्यकता भी कहीं न कहीं मन के प्रसंग को प्रबंध रचना के लिए चुने जाने में निहित है। इसीलिए संभवतः पंत ने भी लोकायतन में कथा के पौराणिक आख्यानों की जगह स्वरचित लोक आख्यान को उठाया। शायद पंत भी इतिवृत्त की इस पारंपरिक झंझट से परिचित थे। यह दूसरी बात है, एक सर्वथा स्वरचित लोक आख्यान को अपनी प्रबंध रचना का विषय बनाने के बावजूद विवरण उन पर हावी हो गया है। पौराणिक ऐतिहासिक इतिवृत्त से तो उन्होंने छुटकारा पा लिया, लेकिन बिंब की भाषा की जगह विवरण की भाषा को अपनाकर उन्होंने सारा गुड़ गोबर कर दिया है। इस नई रचनात्मकता के कलेवर में जैसे इतिवृत्त का भूत बैठ कर बोलता है, हालांकि इस भूत की आवाज़ को झीना करने के लिए उन्होंने कथा प्रबंध को मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक द्वारों की अमूर्तता में बांधने और सजाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन भूत तो भूत, उसका जादू सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। पंत उसे जितना ही झीना करते हैं, जितना ही दबाते हैं, उसका मुंह बंद करते हैं, वह बार बार हकलाता हुआ पुक्का फाड़ देता है। लोकायतन की असफलता प्रबंध के नए स्थापत्य की इसी अधूरी पहचान के कारण है। पृष्ठ संख्या 100। दिनकर की उर्वशी में तो इतिवृत्त भी पूर्णतया विद्यमान है। मुझे नहीं लगता कि गद्य की भाषा की इस चुनौती के फलस्वरूप दिनकर ने कभी प्रबंध के नए संदर्भगत स्थापत्य के बारे में सोचा भी है। इतनी सूक्ष्म रचनात्मक दृष्टि उनकी नहीं है, वह एक हुंकारने वाले कवि हैं। उर्वशी में समस्या पुराने स्थापत्य से निपटने की नहीं, बल्कि उसके सफल निर्वाह की है। प्रबंधात्मकता का यह पारंपरिक सफल निर्वाह उसमें अक्षुण्ण है, लेकिन यह कोई उपलब्धि कतई नहीं है। इसीलिए उर्वशी की अपेक्षा लोकायतन प्रबंध रचना के क्षेत्र में फिर भी आगे की रचना है, और कामायनी इन दोनों से आगे। प्रबंध के स्थापत्य का एक नया प्रारंभ बिंदु है। प्रसाद को भी इस विवरणात्मकता का गहरा एहसास है। उन्हें लगता है कि कथानक चाहे इंद्र या मनु का ही क्यों न हो, उसमें इतिवृत्त की झीनी आहट तो रहेगी ही, इसीलिए प्रसाद उसे और झीना करने के लिए पूरी प्रबंध रचना को मनोवैज्ञानिक प्रखंडों में बांटकर उसके शरीरी अर्थ को अशरीरी और अमूर्ततम कर देते हैं। पंत को मनोवैज्ञानिक द्वारों की प्रेरणा शायद प्रसाद के इसी प्रयास से मिली है, और उन्होंने वही उपाय अजमाने की कोशिश लोकायतन में की है। लेकिन प्रसाद की सफलता का रहस्य इसमें है कि अपनी इस पूरी प्रबंध रचना को मनोवैज्ञानिक अमूर्त प्रखंडों में विभाजित करने के साथ ही उन्होंने बिंबात्मक भाषा का भरपूर और सफल उपयोग किया है। इस तरह इन दोहरे उपायों द्वारा वह इतिवृत्ति के निष्कासन का सामना करने में काफ़ी दूर तक सफल हुए हैं। पंत उनकी प्रेरणा से लोकायतन में मनोद्वारों की रचना तो करते हैं, लेकिन भाषा के स्तर पर उसी विवरणात्मकता से काम निकालना चाहते हैं। फलस्वरूप सब कुछ गड़बड़ हो गया है। इस संबंध में महादेवी जी की स्थिति सबसे अलग है। शायद वे बिंब की भाषा के उपयोग की सीमाएं अच्छी तरह पहचानती हैं। शायद उन्हें यह भी मालूम है कि बिंब की भाषा के प्रयोग द्वारा पूर्ण रूपेण सफल प्रबंध रचना संभव नहीं है, या वह उतनी बड़ी महत्वाकांक्षा से लैस नहीं है। जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा से लैस होकर प्रसाद ने कामायनी और पंत ने लोकायतन की रचना की, शायद संवेदना और अनुभूति के सघनतम क्षण बिंदुओं को प्रबंध विस्तार में फैलाने और चित्रा देने के पक्ष में महादेवी नहीं है। उसमें उन्हें या तो खतरा दिखाई देता है या सौंदर्य की मार्मिक तन्मयता भंग होती लगती है, जो महादेवी जैसी सौंदर्य प्रिय मानसिकता के अनुकूल नहीं ठहरती। शायद महादेवी यह भी जानती हैं कि संवेदना और अनुभूति के सघनतम क्षण बिंदुओं के संगठन तत्व को प्रबंध विस्तार की लंबाई में बिंब की भाषा के प्रयोग द्वारा कायम नहीं रखा जा सकता। इसीलिए भगवान बुद्ध के प्रति अनन्य श्रद्धा के बावजूद उन्होंने बुद्ध चरित या सौंदरानंद की रचना की बात कभी नहीं सोची। वे अपनी अनुभूति के सघनतम संगोपन में ही संतुष्ट हैं, जिसके अर्थ संगठन की सघनता के भीतर आप उंगली नहीं रख सकते। पृष्ठ संख्या 101। निराला के संदर्भ में स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं है। प्रबंध रचना को लेकर वह पंत या प्रसाद जैसी महत्वाकांक्षा से लैस नहीं दिखाई देते। दूसरी ओर महादेवी की तरह भाषागत सीमा की स्पष्ट पहचान भी निराला में नहीं मिलती। शायद निराला को अपनी भाषा सर्जना पर इतना अगाध विश्वास है कि वह यह समझ बैठे हैं कि इतिवृत्ति का बाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी हठपूर्ण अनंत निष्ठा के कारण वह राम की शक्ति पूजा में शब्द तांडव का अघोर नृत्य रचकर बुलाते से लगते हैं कि देखो, भाषा सर्जना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। इसी अनंत विश्वास के कारण वे तुलसीदास में भाषिक संरचना की चरम संश्लिष्टता का उदाहरण पेश करते हैं। लेकिन बावजूद इसके मुझे बराबर लगता है कि प्रबंध रचना को लेकर निराला की महत्वाकांक्षा और चिंता उस कोटि की नहीं है जैसी प्रसाद या पंत की है। वह कालिदास की प्रशंसा करते हुए भी उन्हें हिंदी की प्रकृति के निकट का कवि नहीं मानते। तुलसीदास उनके लिए आदर्श जरूर हैं, लेकिन चुनौती नहीं। उनकी चुनौती तो रविंद्रनाथ हैं, जो सरस्वती के इकले नूपुर इकट्ठा करते हैं, जो आधुनिक जमाने में प्रबंध रचना को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते। इसीलिए बावजूद राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास लिखने के, उनकी रुझान प्रबंध की ओर नहीं मालूम पड़ती। निराला अपने व्यक्तित्व और कवित्व दोनों की संरचना में निर्वाह के पक्षधर उतने नहीं हैं जितने तोड़फोड़ और प्रयोग के। वह कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं जो अब तक हिंदी कविता या भारतीय साहित्य में कभी नहीं हुआ हो। उनका मुख्य मन यही है। इस प्रयत्न में जब जब उन्हें यह खतरा दिखाई देता है कि शायद लोग इस तोड़फोड़ को उनके असामर्थ्य का पर्याय मान बैठेंगे, तो वे परंपरा निर्वाह के दो दो हाथ दिखा देते हैं कि जिसे तुम बड़े सामर्थ्य की चीज समझते हो, वह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए वे संस्कृत कविता की व्याख्या, विवेचना, छंदशास्त्र, ऋग्वेद, वैष्णव दर्शन, वेदांत आदि की बातें करते हैं। उसमें अपने को निष्णात और पारंगत बताते हैं, जिससे कोई यह ना कहने का साहस करे कि यह तोड़फोड़ की कार्रवाइयाँ करने वाला निराला कुछ जानता नहीं। यह बात कुछ अपनी कार्रवाइयों का लोहा मनवाने के लिए है, वरना निराला की रुचि तो कविता द्वारा अपने आंतरिक मन के संताप के गहरे साक्षात्कार में है, जो उनके गीतों में अभिव्यक्त हुई है, या महंगू में है, कुकुरमुत्ते में, बिल्ले सुर और चतरी चमार और कानी रानी की रचना में है। जब यह सब कुछ रचकर भी उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उनका संताप नहीं मिटता, तो अंततः टूटकर वह वैष्णव भाव से शरणागति की स्थिति में उतर आते हैं, जहां उन्हें लगता है उन्हें सारे परितापों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जीवन भर तोड़फोड़ करने वाले और नई संरचना की खोज करने वाले निराला का आधुनिक मन तुलसीदास का मन तो है नहीं कि वह अभी तक विनष्ट होकर अब आगे विनष्ट नहीं होगा। उनके मन का द्वैत बार बार उन्हें घेरता है। पृष्ठ संख्या 102, उनकी एकांत भक्ति और अंतिम शरणागति को उन्हीं के लिए असंभव बनाता है। इसीलिए उन्हें प्रार्थना की व्यर्थता की अनुभूति बार बार घेरती है। उनके काव्य का बहुमुखी मर्म उनकी इसी सर्वग्रासी अभिशप्त मना स्थिति में ढूंढना उचित होगा। इसीलिए निराला की ये कविताएं लंबी कविताएं हैं, खंड काव्य या प्रबंध रचनाएं नहीं। उनमें कथा तत्व विद्यमान है, इसीलिए मैंने उन्हें लंबी कथात्मक कविताएं कहा है। उनमें पुरानी कथा को सुरक्षित रखते हुए उसके भीतर नए अर्थ की सूक्ष्म प्रतिष्ठा है। इस नए अर्थ की प्रतिष्ठा के द्वारा ही निराला ने अपने इन कविताओं को पारंपरिकता से अलग एक नए धरातल पर प्रतिष्ठित किया है। इस नए अर्थ की प्रतिष्ठा की जो परंपरा प्रामेथियस से शुरू हुई या रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, कर्णप्रिया या संशय की एक रात में जिस धरातल पर इसकी प्रतिष्ठा हुई है, निराला की इन लंबी कविताओं में इस नए अर्थ की प्रतिष्ठा उनसे पृथक कुछ दूसरे ही धरातल पर हुई है। अधिकांशतः कवि जब किसी पौराणिक ऐतिहासिक आख्यान को लेते हैं तो उसमें पुराने अर्थ को सुरक्षित रखते हुए जनमानस में बैठी हुई पात्रों और चरित्रों की तस्वीर को भंग न करते हुए भी अपने समय की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की चिंता और निर्णय को उस कथा में प्रतिष्ठित कर देते हैं। यह प्रतिष्ठा ही उस इतिवृत्ति में एक नए प्राण रस का संचार करती है और इसी मौलिक रचनात्मक ऊर्जा के द्वारा एक ही कथा बार बार नई होती चलती है। उपर्युक्त कविताओं में इसी कलात्मक संरचना के स्तर पर बार बार एक ही कथा को कवियों ने नित नूतन किया है। वह नाना पुराण निगमागम सम्मत तो है, लेकिन वह नहीं है जो नाना पुराणों में थी, निगमों में थी। वह कुछ नई नवीन अननुभूत है। अगर ऐसा नहीं है तो मात्र पुनरावृत्ति में किसी भी प्रतिभाशाली समझदार कवि को क्या रुचि होगी। इसीलिए रामचरितमानस एक युग प्रवर्तक काव्य ग्रंथ है, लेकिन कृष्णायन एक निरर्थक पुनरावृत्ति। बल्कि कृष्ण के इतिहास के संबंध में प्रिय प्रवास और कर्णप्रिया अपने नए अर्थ संदर्भों की वजह से सर्वथा सार्थक रचनाएं हैं और कृष्णायन नितांत निरर्थक। लेकिन निराला ने अपनी इन कविताओं में जिस नूतन अर्थ का संचार किया है, उसमें अपने समय की सामाजिक, नैतिक, ऐतिहासिक समस्याओं और निर्णयों को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न उतना प्रबल दिखाई नहीं देता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह नहीं कहा जा सकता। जितना अपने आत्म से इन कविताओं में भी साक्षात्कृत होने का प्रयत्न, इसी को मैंने इस निबंध के प्रारंभ में ही कहीं आत्म प्रक्षेप कहा है। इन कविताओं में निराला की अंतर्मुख व्यक्तिगतता ही प्रमुख है जो कि उनके गीतों में है। अंतर यही है कि उस व्यक्तिगतता को एक कथा के सहारे बड़े दूरवर्ती संकेतों के माध्यम से प्रतिष्ठित किया गया है। चाहे वह शिवाजी का पत्र हो या राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृत तुलसीदास या पृष्ठ संख्या 103, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, ये सारी कविताएं प्रकांतर से आत्मचरितात्मक ही हैं। इनमें निराला ने अलग अलग धरातलों पर अलग अलग ढंग से अपनी रचनात्मकता के विभिन्न पहलुओं का ही साक्षात्कार किया है। यानी कि ये कविताएं कवि की रचना प्रक्रिया को परिभाषित करने, उसे समझने, उसके अंग उपांगों को रेखांकित करने, उसकी सीमा और परिधि पहचानने, उसके दायित्व और दर्द झेलने के अनूठे प्रयत्नों के साक्षात्कार का ही परिणाम है। इस रूप में ये कविताएं अपने युग, समय और इतिहास को नए सिरे से व्याख्यायित करने के प्रयास का उतना प्रतिफलन नहीं है जैसे कि प्रामेथियस है, या रामचरितमानस, या प्रिय प्रवास, कर्णप्रिया, या संशय की एक रात। बल्कि ये कविताएं अपने कवि के निजत्व की पहचान का ही प्रतिफलन है। इसीलिए वह निजी अधिक है, सार्वजनिक कम। इस दृष्टि से निराला की अपनी ही रचना प्रक्रिया की यह व्याख्या पुनर्पहचान और पुनर्प्रतिष्ठा, मुक्तिबोध की अभिव्यक्ति आत्मसंभवा या अज्ञेय की असाध्य पीड़ा की रचनात्मकता की पहचान और उसके प्रति एकांत समर्पण, अथवा आर्थर रैम्बो की नरक में एक ऋतु के निजी साक्षात्कार के अधिक निकट पड़ती है। इसीलिए राम की शक्ति पूजा राम कथा कम है, निराला के रचनात्मक संघर्ष संशय और आत्म बलिदान की कहानी अधिक। हालांकि यह अर्थ प्रतिष्ठा या व्यक्तिगतता अपने रचनात्मक संघर्ष का राम के व्यक्तित्व में यह समावेश इतना सूक्ष्म है कि इसका अर्थ संधान करना पड़ता है। तुलसीदास कविता में रचनात्मकता और अपनी काव्य वर्चस्विता को पाने के संकेत राम की शक्ति पूजा से अधिक स्पष्ट और मुखर हैं और इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। शिवाजी का पत्र के सांस्कृतिक विनाश की चिंता और तुलसीदास के सांस्कृतिक अंधकार में भी चिंता के स्तर पर एक सूक्ष्म एकान्विति है। राम की शक्ति पूजा या तुलसीदास कविताओं में यह निजी आत्म प्रक्षेप अपनी रचनात्मकता की खोज, पहचान, प्रतिष्ठा और रेखांकन जितना ही झीना है, सरोज स्मृति में वह उतना ही स्पष्ट और शब्द मुखर है। कुछ कुछ आत्म आलाप और संताप के स्तर तक फिर अपनी पराजय एकाकीपन रचनात्मक संघर्ष की जो कथा सरोज स्मृति में है, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पश्चिमीय युवक की उपेक्षा और प्रताड़ना में भी वही संकेत दोहराया गया है। इस प्रकार मैं जो कहना चाहता था वह यह कि निराला की इन लंबी कथात्मक कविताओं में एकान्विति के सूत्र वर्तमान हैं और निजी आत्मविचारक होते हुए भी ये निराला की रचना प्रक्रिया के साथ साथ क्रियाशील अनेक रूपों और स्तरों में से एक विशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं और वह रूप है इतिवृत्त तथा कथा के माध्यम से अपनी ही रचनात्मकता के संदर्भों की पहचान और प्रतिष्ठा का रूप। इसीलिए देखने में बिल्कुल अलग-अलग लगती हुई भी किसी न किसी सूक्ष्म गहरे पृष्ठ संख्या 104 धरातल पर निराला की ये पांचों लंबी कथात्मक कविताएं, एक शिवाजी का पत्र, दो राम की शक्ति पूजा, तीन तुलसीदास, चार सरोज स्मृति और पांच स्वामी प्रेमानंद जी महाराज मुक्तिबोध की उसी अभिव्यक्ति आत्मसंभवा की खोज के निकट पड़ती हैं। इस रूप में निराला की ये लंबी कविताएं और मुक्तिबोध की लंबी कविताएं एक दूसरे के बहुत निकट पहुंच जाती हैं और दोनों इस धरातल पर आकर एक ही प्रकार की विषय अभिव्यक्ति तथा एक ही तरह की मौलिक ऊर्जा के कवि लगते हैं। उनकी समस्याएं, उनका दर्द और उनकी खोज का धरातल एक हो जाता है। अंतर इतना ही है कि निराला ने अपनी इस अभिव्यक्ति आत्मसंभवा को पौराणिक, ऐतिहासिक, इतिवृत्त और लोक वृत्तों में प्रतिष्ठित किया है और मुक्तिबोध ने अपनी कल्पना ऊर्जा को सामाजिक चिंता द्वारा आख्यानवत, रचित आख्यान या इतिवृत्त रहित कविताओं में। इस दृष्टि से राम की शक्ति पूजा मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में या अज्ञेय की असाध्य पीड़ा के निकट अधिक है, संशय की एक रात के निकट कम। जबकि संशय की एक रात और राम की शक्ति पूजा में संशय का ऊपरी साम्य बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। ऊपर एक जगह मैंने अभी कहा है कि ऐतिहासिक पौराणिक इतिवृत्तों में इस नूतन अर्थ संचार की प्रक्रिया में निराला में अपने समय की सामाजिक, नैतिक और ऐतिहासिक समस्याओं और निर्णयों को प्रतिष्ठित करने का सफल प्रयत्न उतना प्रबल नहीं दिखाई देता जितना इन कविताओं में भी अपने आत्म से साक्षात्कृत होने का। लेकिन मैंने यह भी कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता। कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर अपने समय की सामाजिक समस्याओं, निर्णयों और नैतिक स्थितियों की प्रतिष्ठा भी इन कविताओं में मौजूद है, चाहे वह कितनी भी छीड़ क्यों न हो। अंतर यही है कि इन दोनों अर्थों की प्रतिष्ठा में आत्म साक्षात्कार और अपनी तेजस्वी रचनात्मकता की पुनर्पहचान की प्रतिष्ठा ज्यादा प्रबल है। सामाजिक ऐतिहासिक समस्याओं और निर्णयों की प्रतिष्ठा उससे नीच है, बल्कि यों कहीं कि इस दूसरे और ज्यादा जाने पहचाने अर्थ की प्रतिष्ठा भी इसी आत्म साक्षात्कार में से ही प्रपुष्टित हुई है। जाने पहचाने अर्थ की प्रतिष्ठा भी इसी आत्म साक्षात्कार में से ही प्रस्फुटित हुई है। अतः इन दोनों अर्थों को साथ साथ प्रतिष्ठित करने से कविताओं में शिल्पगत विखंडन और कलात्मक स्खलन की स्थिति भी उत्पन्न होती नहीं दिखाई देती, बल्कि इन दोनों अर्थों में एक संश्लिष्ट समाहार दिखाई देता है जो कविता को शिल्प और भाषिक संरचना के स्तर पर और ठोस, सघन एवं संतुलित बनाता है। दोहरे अर्थों की यही प्रतिष्ठा मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में या चंबल की घाटियों में या रैम्बो की नरक में एक ऋतु में भी दिखाई देती है। असाध्य पीड़ा में सिर्फ कवित्व और कला के रचनात्मक निष्ठा की परीक्षा, और उसमें वह पृष्ठ संख्या 105 ऐतिहासिक सामयिक अर्थ कहीं भी प्रस्फुटित होता हुआ दिखाई नहीं देता। इसके ठीक विपरीत, संशय की एक रात में ऐतिहासिक चिंता की प्रतिष्ठा ही प्रमुख है। वह सामाजिक चिंता भी है और शाश्वत भी। लेकिन कवि के रचनात्मक अनुभव और कवित्व की रचना प्रक्रिया के एकांत आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति उसमें कहीं नहीं है। इस दृष्टि से संशय की एक रात में जिस नए अर्थ, युद्ध और शांति की चिंता की प्रतिष्ठा श्री नरेश मेहता ने करने की कोशिश की है, वह इकहरी है। निराला और मुक्तिबोध की तरह दोहरी, संश्लिष्ट और समाहित नहीं। इस तरह अज्ञेय और नरेश मेहता की ये दोनों कविताएं अर्थों की दृष्टि से इकहरी होते हुए भी दो छोरों पर स्थित हैं। एक में अज्ञेय सामाजिक समस्याओं और निर्णयों की प्रतिष्ठा नहीं है, तो दूसरे में नरेश मेहता कवि की रचनात्मकता का आत्म साक्षात्कार नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इस संदर्भ में हिंदी में सिर्फ निराला और मुक्तिबोध की काव्य चिंता इन लंबी कविताओं में समान है, और इसी नुक्ते नज़र से निराला की इन कविताओं का समुचित अध्ययन किया जा सकता है।